नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
कृष्णा हरे हरे,
हरे राम हरे राम,
हरे राम हरे राम,
राम राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे।
श्री गिरिराज गोवर्धन धाम की। सभी हम श्री गिरिराज के क्षेत्र में एक विशेष जगह पर आए हैं जिसका नाम है चंद्र सरोवर। श्री गिरिराज की जो परिक्रमा है, जो लोग लगा रहे हैं, लगाते हैं, अभी भी देखा आपने, लगाते रहे, उसमें एक परिक्रमा है 7 कोस की, यानी 22 किलोमीटर की, और एक दीर्घ परिक्रमा है जो 40 किलोमीटर की होती है, 40 किलोमीटर। तो ये जो क्षेत्र है ये दीर्घ परिक्रमा में आता है, तो यहाँ पर भीड़ नहीं है। वहां पर जाएंगे आपको चलने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। आज तो एकादशी है, इसके बाद में कार्तिक शुरू होने वाला है, इसके 5वें दिन पे पूर्णिमा आएगी, वो शरद पूर्णिमा होगी, उसमें तो यहाँ पर तो खड़े रहने को भीड़ जगह नहीं होगी। तो मैं वैसे ही अभी प्रभु जी को बता रहा था आते वक्त कि अगर आपको हमेशा भारत भर की छुट्टियों को, जो छुट्टियां होती है कॉमन छुट्टियां, उसको पकड़ के आना है तो आपको हर समय यही स्थिति मिलेगी। अगर आपको रियली ब्रज देखना है तो आपको ऑफ टाइम में आना होगा, तो किसी की छुट्टी नहीं है उस समय, क्रिसमस नहीं है, दिवाली नहीं है, दशहरा नहीं है, ऐसा आपको छुट्टी पकड़ना पड़ेगा। और उस समय आप सब अंतरंग स्थानों में जा सकते हैं, अंदर अंदर के स्थान में जा सकते हैं, आराम से दर्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह वो संकर्षण कुंड का बताया ना, जो ब्रज फाउंडेशन ने जिसका जीर्णोद्धार किया है, जैसे रामताल का किया है, तो संकर्षण कुंड बीच परिक्रमा के रास्ते पर है, और वहां पर केवल चल के आज जा सकते हैं। उसके लिए कम से कम आपको 1 किलोमीटर तो गिरिराज के पास, और वहां से 1 किलोमीटर संकर्षण कुंड के पास, 2 किलोमीटर धूप में चलना पड़ेगा। और गिरिराज का निकट दर्शन करना है तो एक पॉइंट से मैं आपको उतार दूंगा, वहां से आपको 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब आप गिरिराज के सामने आ जाएंगे एकदम ऐसे। वहां पर भी प्रचंड भीड़ होगी, नॉइज होगा, सब कुछ होगा, धूप का समय है। तो मैं आपको गिरिराज का दर्शन उधर कराऊंगा जहां पर मानसिक गंगा है, वहां पर आपको दर्शन होगा गिरिराज जी का, निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप हमेशा छुट्टियों को पकड़ के ही मत आना, छुट्टियां निकाल के एक बार ब्रज में आना, जिस समय एकदम शांति होती है यहाँ पर। सबसे बेस्ट पीरियड यहाँ का है 2nd half of November, जब नवंबर में आप आते हो 2nd half में, तो बहुत सुंदर ठंडी होती है, ज़्यादा भी नहीं होती है, और आपको बराबर बिल्कुल थकान नहीं आएगी, एक बूंद पसीना नहीं आएगा, दिन भर आप चुस्त रहेंगे, जहाँ चले वहाँ पर घुमाने के लिए आप तैयार रहोगे, और धूप का कष्ट नहीं होगा उस समय, बहुत आनंद रहेगा। आप स्वेटर पहन कर घूमोगे दिन भर और बहुत अच्छा रहेगा। हर जगह पे ऐसा ही है, मैं उत्तरकाशी में गया था, हिमालय में, उधर भी ऐसा ही था कि जब 4 धाम की यात्रा समाप्त होती है उसके बाद में वहाँ रियल पीरियड शुरू होता है, जिसको आराम से भजन करना है, दर्शन करना है, उनको सितंबर के एंड में जाना है वहाँ पर, वहाँ पर कोई भीड़ टी टॉ कुछ नहीं होगा उस समय, शांति से। हरे कृष्णा। तो ये दीर्घ परिक्रमा में आता है, और हमारे संप्रदाय में एक सन्यासी महाराज हुए हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे, उनके गुरु थे वो। तो सनातन गोस्वामी हर रोज अपनी उम्र के 70 साल तक 40 किलोमीटर की परिक्रमा रोज किया करते थे, एवरी सिंगल डे। और मैं कई ब्रिजवासियों को आज भी जानता हूं जो तो सन्यासी नहीं है, दुकानदार हैं, बनिया हैं, बिजनेसमैन हैं, रोज सवेरे मोटरसाइकिल से वृंदावन से गोवर्धन आते हैं, राधा कुंड के पास पार्क करते हैं और 3 से 3.5 घंटे में गोवर्धन परिक्रमा पूरी करते हैं, दोबारा मोटरसाइकिल बैठते हैं, घर जाते हैं, नाश्ता करके दुकान में बैठ जाते हैं और 12 घंटा दुकान में धंधा करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर गिरिराज में आते हैं। और उनके आप चल के देखोगे ना, वो ना दौड़ रहे हैं ना चल रहे हैं, बीच में कुछ कर रहे हैं, यू नो इट इज फास्टर देन वॉकिंग एंड स्लोअर देन रनिंग, दे आर इन बिटवीन। पर आप उनको मैच नहीं कर सकते, आपको दौड़ना पड़ेगा उनके पीछे, लेकिन वो चल रहे हैं और वो कुछ बात बात कुछ करते नहीं है, जब करते रहते हैं और सीधा चलते हैं 3.5 आवर्स फिनिश कर देते हैं। हम और आप, अगर मैं चलूंगा समझो कोई चलेंगे तो हमको 6 घंटा लगेगा और कोई थक जाएगा तो 8 घंटा लगेगा और रुक रुक के जाएगा तो 12 घंटा भी लग सकता है। आपको रुकना है, पानी पीना है, शरबत पीना है, बीच में सिंगाड़े खाना है, केले खाना है, सब कुछ करना है। तो और एक यात्रा ऐसी होती है जो हमारे महाराज जी पूरी परिक्रमा चल के हमसे करवाते थे और एक एक जगह बैठकर, जैसे एक जगह आई तो उसकी कथा बताते थे, सब लोग आए बैठे कथा सुना फिर चले। तो वो परिक्रमा जो है 15 घंटे की होती है, सुबह 5-6 बजे शुरू करते हैं, रात को 10-10:30 बजे खत्म होती है। महाराज एकदम उत्साह से, सारे 22 किलोमीटर हमने डांसिंग परिक्रमा भी किया है, सोच सकते हैं आप, वॉकिंग और रनिंग भी कुछ नहीं, डांसिंग, जस्ट डांस एंड गो अहेड। वो भक्तों के संग का शक्ति है, जब भक्त संग में होते हैं ना तो कोई थकान नहीं होती है, कोई विचार नहीं आता है, कोई पैर के तो ध्यान देता नहीं है। और जितने महाराज के पास में रहकर चलोगे उतना तो सब कुछ भूल जाएंगे आप, आपको पैर है ही नहीं लगेगा, घर जाके दर्द होगा, यहां पर नहीं दर्द होगा। संतों की संघ की महिमा ही ऐसी होगी, संतों के संग में जो जाएगा ना वो शरीर की थोड़ा परे चले जाएगा, पूरा नहीं जाएगा लेकिन शरीर के परे चले जाएगा, शरीर में क्या दुख रहा है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, सब भूल जाएगा। कीर्तन का भी ऐसा रहता है, तो कीर्तन गाने वाले के पास में आप रहोगे तो आप ऐसा नाचोगे जोरदार, थोड़ा पेरिफेर में जाओगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे, ऐसा है। ये सब इसलिए बता रहा हूं मैं कि सब कुछ घुमा फिरा के कितना भी प्रवचन करूं उसका सार एक ही है कि भगवान के भक्तों के संग में भजन करना है हमको। अकेले करेंगे तो कष्ट होगा, मुश्किल होगा, लेकिन भक्तों के संग में सारी साधना, सारा जो परिश्रम है आसान हो जाएगा। समझेगा भी नहीं आपने कैसे किया, कब किया, कब पहुंचे, क्या किया, परिक्रमा खत्म हो गई, समझेगा नहीं। सबका की पॉइंट है ना एसोसिएशन है, क्योंकि एसोसिएशन सत्संग में ही जब सीखते हैं, संग में ही हम मंदिर की पूजा अर्चा करना सीखते हैं, संग में ही धाम की यात्रा करते हैं, संग में ही भागवत पढ़ते हैं, संग में तुलसी की पूजा करते हैं, सब भगवान के भक्तों के संग में करेंगे। सारी विधियां जो है 64 विधियों का वर्णन किया गया है, वो सब एकदम बढ़िया से हो जाएगा आपका। सिंपल एग्जाम्पल, कैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं घर में पढ़ने को, तो आप माँ पढ़ाते हैं तो बहुत बोर हो जाते हैं उनको, क्या पढ़ने का दिन भर, 4-5 बच्चे साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं एकदम आसान, पढ़े मन नहीं लग रहा है, लाइब्रेरी में जाओ सब लोग पढ़ रहे हैं, वहां बैठते हैं, थोड़ा देर के बाद आपका मन बनेगा पढ़ाई का। संग चाहिए हर चीज के लिए, भक्ति के लिए भी संग चाहिए। तो एनीवे, हमारे सनातन गोस्वामी हर रोज इसकी परिक्रमा करते थे, 70 साल की उम्र में जब भी उन्होंने ये परिक्रमा करना नहीं छोड़ा, ऐसे ना मतलब 10 मिनट में 2 कदम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे भी स्पीड था उनका एक समय, इतने बुढ़े हो गए थे वो। तो भगवान कृष्ण जो है वो बालक बनकर उनके सामने आए, बोले बाबा अभी क्यों चल रहे हो, जिंदगी भर चले आप, अभी बस करो आप, बैठ जाओ। बोले नहीं बेटा, ये तो मेरा व्रत है, मुझे तो करना ही है। और वो बेटा जो बालक है वो आगे आगे जाके बात कर रहा है और ये चल रहे हैं, चलते चलते ही बात कर रहे हैं। नहीं बाबा, आप कुछ बहुत आपने परिक्रमा किया है, अभी आपका परिक्रमा संपूर्ण हो गया है, सफल हो गया है, परिपूर्ण हो गया, अभी आप आराम करो, कुटिया में भजन करो आप। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो करना ही है। 40 किलोमीटर चल रहे हैं बोलो रोज 70 साल की उम्र में, ये 22 किलोमीटर को लगते 6 घंटे, तो 40 किलोमीटर बुढ़ा आदमी को कितने घंटे लगेंगे, दिन भर तो चलना ही है, कुछ देर बैठना है, कुछ देर सोना है, बाद में चलना ही है। तो फिर वो बालक अदृश्य हो गया और वो बालक जो है ना वो गिरिराज के ऊपर गया, वो कृष्ण स्वयं थे ना, श्याम सुंदर थे वो, वो गिरिराज पे चढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं चढ़ सकते। तो गिरिराज के ऊपर गया वो बालक कृष्ण, मुरली निकाली, मुरली बजाई। जैसे ही मुरली बजाई तो गिरिराज पर्वत पिघलने लगे उस भाव से, मुरली के प्रभाव से। तो जैसे पिघलने लगे तो उनके पैर ऐसे, वो क्या खड़े हैं वो ऐसे, कभी डांबर का एक्सपीरियंस किया आपने, गरम गरम डांबर का चलेंगे तो ऐसा पैर आपका अंदर जाएगा उसके, क्योंकि वो पिघल रहा है ना, पतला हो रहा है वो गरम गरम। वैसे पत्थर जब पिघलने लगा तो भगवान के चरण चिन्ह बने उसके अंदर, ऐसे एक आधा और एक पूरा, ऐसे खड़े थे भगवान ऐसे। तो उन्होंने मुरली बजाना बंद कर दिया तो पत्थर पिघलना बंद हो गया और सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन चरणों के चिन्ह वाला बना। फिर वो उतरे, उन्होंने वो शिला उठाया और शिला लेके बालक बन के फिर भाग भाग के आए, बोले बाबा बाबा अरे ये शिला ले लो, इसकी परिक्रमा कर लो, वही परिक्रमा का फल मिलेगा आपको, ये परिक्रमा ले लो, ऐसा दे दिया, हाथ में पटका दिया और गला गायब हो गया बच्चा। गिरिराज की शिला है, थोड़ी पटक के आ सकते हैं, किसने दिया है तो हाथ में लेके अपने घर पे आए परिक्रमा पूरी करके। रात को सोए तो वही बालक स्वप्न में आया उनके, बोले मैं ही गिरिधारी श्री कृष्ण हूं, मेरी ये इच्छा है कि अभी आप परिक्रमा बंद कर दो, तो मैंने दी हुई शिला का चार बार परिक्रमा करो तो आपको पूरी परिक्रमा करने का लाभ मिलेगा। तो दिन से रात में उठे एकदम चौंक कर, तो सब दिन का प्रसंग याद आया, वो कैसे बालक आ रहा था, कितना मधुर स्वीट था वो बालक, कैसे मना रहा था, कैसे अदृश्य हो गया फिर दोबारा आया, सब उनको याद आया। एंड ही कुड कनेक्ट कि वही बालक श्याम सुंदर जी थे, तो स्वयं आके मुझे बोल रहे थे और मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ, मैंने मना किया तो सपने में आके दर्शन देके दोबारा समझाया कि अभी मत करो, अभी इसकी परिक्रमा करो। तो उसके बाद सनातन जी महाराज वो शिला की चार बार परिक्रमा करने लगे और वहीं बैठ के भजन करने लगे। तो सनातन गोस्वामी व्यास पूर्णिमा का दिन शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उनका ऐसा प्रण था कि वो रोज परिक्रमा करते थे, लेकिन व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का दिन जहां हमारा चतुर्मास शुरू हुआ ना, वो गुरु पूर्णिमा का दिन वो सारे ब्रजवासियों को लेकर परिक्रमा करते थे, मास परिक्रमा। तो ऐसे ही बुढ़ापे के बाद में, बहुत दिन के बाद में, वो साल भर की परिक्रमा एक बार करते थे। तो एक दिन जब व्यास पूर्णिमा आई और सब लोग इकट्ठा हुए तो महाराज जी ध्यान में बैठे हुए, तो उन्हें आवाज दिया महाराज को, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर आवाज दिया, फिर कोई प्रतिसाद नहीं मिला। फिर एक जो थोड़ा नजदीकी था उनका परिचित, वो अंदर गया और महाराज जी को बोला, महाराज जी ऐसे कुछ बोलने वाला था कि महाराज चलना है ना, तो महाराज जी धाड़ करके गिर गए, ऐसे हिलाते ही वो मतलब समझ गया कि ये तो चले गए हैं, जिस तरह से बैठे हुए हैं उसी में वो अंतर्धान हो गए, मतलब भगवान के धाम में चले गए। तो ऐसे कहते हैं कि ब्रज में, पूरे ब्रज में दुख की लहर उठी, ऐसे वेव ऑफ डिस्पेयर, सारे ब्रजवासी दुखी हो गए क्योंकि वो सब ब्रजवासियों के गुरु थे। तो उन्होंने व्यास पूर्णिमा के दिन उनके शव को, उनके जो पवित्र शरीर को इस पे लिया, चार लोग ने अर्थी के रूप में लिया और पूरी परिक्रमा की। आज भी व्यास पूर्णिमा के दिन गौड़ीय वैष्णव के लोग सनातन गोस्वामी की प्रतिकृति फोटो लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा वैष्णवों के जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, चाहे वो पुष्टि मार्गी हो, गौड़ीय हो, निम्बार्की हो, कोई भी संप्रदाय के हो, सभी संप्रदाय के भक्त वैष्णव जो होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो गिरिराज की परिक्रमा को एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। तो हम भी साल में कई परिक्रमा लगा देते हैं, यात्रा में लगाते हैं, कभी यात्रा लेके आते हैं उनको साथ में लगाते हैं, लेकिन उसके लिए काफी निश्चय की आवश्यकता है, ना हो सके आदमी नहीं कर सकता है उसको, विचार से ही हट जाएगा उसमें से, और करने लगेगा तभी वो दोबारा गाली दे के निकल जाएगा, बोले क्या करते हो आप लोग। उसके लिए काफी निश्चय की आवश्यकता होती है, मनोनिग्रह की आवश्यकता होती है, और करना है ऐसा प्रण होना चाहिए फिर कर सकते हैं। आज भी मंदिर के हमारे कई भक्तों ने कई ग्रुप में आके परिक्रमा लगाई है, सुबह 5 बजे निकले थे, 10 बजे तक लगा दिया उन्होंने परिक्रमा। एनीवेज आप लोगों की जब मन की तैयारी होगी तो बोल देना, हम आपको ले जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि यमुना गोवर्धन को भगवान ने वरदान दिया था कि आपके इर्द गिर्द में मेरे अंतरंग लीला करूंगा, तो गोवर्धन की परिक्रमा में बहुत ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान ने बहुत लीला किया है, सारे स्पॉट्स हैं उसके बीच में, ऐसे ऐसे आते रहते हैं, तो वहां रुक रुक के हम कथा करते हैं, बैठ के करते भी खड़े खड़े कथा कर देते हैं, बहुत सुंदर है। और कभी आप मन में निश्चय करना, और हम एक दिन ठंड के मौसम में आएंगे, इसमें गर्मी वगैरह नहीं होगी, और पैदल चलेंगे, उसमें नियम है, बिना चप्पल चलना है आपको, भगवान नाम लेके चलना है, भगवान नाम के अलावा कुछ चर्चा नहीं करनी है, मुंबई में बिजनेस की बातें नहीं करनी है, फोन पे डील नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि अपना कैसा है चल रहा है, तो भाई बॉम्बे से फोन आया, प्रभु जी क्या करूँ, वो डील करना है, 50 पैकेट मांग रहा है, वो डिलीवरी कर दो क्या, चेक नहीं आया उसका अभी तक, तो बोला हाँ ठीक है अभी दे दो, बाद में बोला चेक ला के देना उसको, तो परिक्रमा में ये सब नहीं, स्विच ऑफ, केवल भगवान नाम, भगवान चिंतन, भगवान लीला स्मरण और भगवत लीला दर्शन, भगवत स्थानों का दर्शन। तो ये चंद्र सरोवर है, मतलब मैं ना आपको मैं शब्दों में कह नहीं सकता कि मैं यहां पर आने पर कितना खुश हूं, सो हैप्पी टू बी हियर, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कुछ चीजें जो है ना वो आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदर होती हैं, और कुछ चीजें आध्यात्मिक और दृश्य स्वरूप में भी सुंदर होती हैं, अभी भी सुंदर लग रही है, आध्यात्मिक दृष्टि से और सुंदर है, वो ऑलरेडी है, आपको गटर दिखाई पड़ रहा है लेकिन वो दिव्य दृष्टि से बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन कुछ चीजें दिखने में भी सुंदर है और दिव्य दृष्टि से भी सुंदर है, दोनों है, वैसे में से एक चंद्र सरोवर है, अष्टकोणी विशाल सरोवर है। तो इसकी छोटी सी कथा, लंबी छोटी जो भी कुछ है, वो कथा ऐसी है, आप सब जानते हैं शरद पूर्णिमा आ रही है परसों, अभी है ना 5 तारीख को, उस दिन सबसे पहले भगवान ने बंसीवट में, जब बंसीवट तब जंगल में था, उस समय कृष्ण के समय घने जंगल में था, कोई शहर वहर नहीं था, यमुना किनारा और घना जंगल जहां पर शेर वगैरह भी आया करते, भगवान ने गीत भागवत में कहा है गोपियों को, क्यों आए तुम जंगल में, इधर शेर होते हैं, इधर खूंखार जानवर होते हैं, क्यों आए इधर आप, ऐसा वर्णन भगवान खुद बोल रहे हैं, मतलब उस समय इतना घना जंगल था वहां पर। तो उन्होंने रात को बंसी बजाई पूर्णिमा के चंद्र को देखकर, बंसीवट पर बैठकर, और उस बंसी को सुनकर सारी गोपियां भाव विभोर हो गई और सब कुछ भूल कर भाग कर पहुंच गई, तो भगवान ने उनका परीक्षा लिया, बोले जाओ आप चले जाओ, अब तो किसकी पत्नी हो, किसी का क्या हो, घर में हो, किसी के कर्तव्य में बद्ध हो, आपको ऐसा आना नहीं चाहिए, सब सही नहीं है बीच रात में घर छोड़ के आना। लेकिन मुरली की तान जो है ना, मुरली की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले, तो वो जब मुरली बजाते हैं तो भक्त जो होता है ना वो अपना सारा सुध-बुध खो बैठता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा भ्रमित हो जाता है, वो सारी सैनिटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं सैनिटी, सैनिटी यानी मन मन की संतुलन होता है ना, जो स्थिर विचार होता है मन के, सब असंतुलित हो जाते हैं। तो मैं एक कहानी बताता हूं आपको कैसे होता है वो। एक गोपी जो है ना वो अपने गाय के लिए घास इकट्ठा कर रही थी, उसको खिलाने के लिए, अभी खिलाने वाली है, तो गाय को खिलाने वाली थी, उस समय ससुर ने आवाज दिया, अरे बहू भूख लग रही है थाली लगाओ, तो वो घास छोड़ दिया और किचन में गई, अपने रसोई में गई और अपने ससुर की थाली लगाई उसने। अब थाली लगा ही रही थी तो भगवान के शरद की बंसी बजी, शरद पूर्णिमा का दिन है, कोई प्रोग्राम बना नहीं है वृंदा देवी द्वारा कि अभी वहां नाचना है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो घर पे अपने सब लोग बैठे हैं, पूर्ण चंद्रमा आकाश में है, शरद की पूर्णिमा है, शाम का समय है, भूख लग रही है ससुर को, थाली बन रही है, बन गई तो बंसी बज गई, तो बंसी बजते ही गोपी का मन इतना विचलित हो गया, एकदम भाव विभोर हो गई वो, उसने जाकर थाली जो है ना रोटी वाली सब्जी वाली वो गाय को रखी और पूरा भूसा जो है वो ससुर को खिलाया। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, किसी ने नीचे का जो है ना आपका क्या बोलते हैं उसको, लहंगा बोलते क्या बोलते हैं उसको, सलवार जो नहीं नहीं वो सलवार जो भी कुछ है वो ऊपर पहन लिया और ऊपर का नीचे पहन लिया, किसी ने आंखों के बदले में गाल में काजल लगा दिया, किसी ने कान का कुंडल जो है नाक में पहन लिया, ऐसा एनीथिंग कंप्लीटली क्रेजी बिहेवियर, वो बोलते हैं इसमें यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, बावड़ी है गई, अरे ये तो बाबड़ी है गई। तुम्हारे एक महाराज के मित्र भी थे, उनको कहते हैं बिरजी बाबड़ो, मतलब ट्रांसेंडेंटल। तो बिरजी बाबड़ो तो सब बाबरी है गई पूरी, और भागने लगी जंगल की ओर। अरे पति को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, रसोई पर रोटी रखी थी छोड़ दिया, दूध निकालती निकाल रही तो दूध को गाय को छोड़ के भागे, ऐसा सब भाग गए पूरे जंगल में। और भगवान ने कहा तुम क्यों आई हो इधर, पता नहीं समय क्या हो गया, देखो घड़ी में कितने बजे। देखो क्या समय है, जंगली जानवर है यहाँ पर, और आप भी तो शालीन कुलीन स्त्रियां हो, अपने घर छोड़कर कैसे आ सकते हो। तो गोपियों ने बहुत उनके साथ तर्क किया है, और भगवान का दिल जीत लिया उन्होंने, उनकी परीक्षा में पास हो गए वो। फिर भगवान ने उनके साथ नृत्य किया है। तो वो सब शरद की रासलीला है, शरद पूर्णिमा के दिन प्रथम रासलीला हुई, उसके बाद रोज रासलीला हुई। शरद की पहली बार हुई बंसीवट के पास, इनॉग्रेशन। उसके बाद में ब्रज के कर्ण, जहां पर आप बैठे हो ना वहां पर रासलीला हुआ है, ब्रज के कर्ण कर्ण पर रासलीला किया भगवान ने उसके बाद में। लेकिन वो रासलीला स्पेशल थी, क्योंकि वो रासलीला में भगवान ने एक दुनिया की रात में ब्रह्मा की एक रात को समाविष्ट कर दिया उन्होंने। हाउ मेनी डेज लिखो, 43,200 इंटू 1,000 अभी करो, कितने हो गए, 43,20,000 सॉरी, हाँ 43 लिखो, 43,20 और उस पर 3 0 लिखो और उस पर और 3 0 लगाओ, अब बताओ कितने होते हैं। चार से बत्तीस कोटि इतने साल कितने होते हैं, उतने समय भगवान ने रासलीला किया, और वो इतना समय दुनिया के 12 घंटे के रात में समा लिया उन्होंने। मतलब जब वो रासलीला खत्म हो गई और वो घर चले गए, तो एक कैलेंडर का रात निकल के सेकेंड डे आया था, तिथि बदली, एक बदली हुई, लेकिन उसमें भगवान ने ब्रह्मा जी के रात का समय 432 करोड़ साल नृत्य किया उनके साथ। वो शरद की लीला है भगवान की। वसंत ऋतु जब हुआ ना, वो कभी होता है, चैत्र वैशाख में होता है, वसंत ऋतु का आरंभ होता है चैत्र की शुरुआत में। तो जब चैत्र की पूर्णिमा आई तो भगवान ने यहां पर रासलीला किया है इस जगह पर, तब यह सरोवर नहीं था, यह प्रविष्ट वन है भगवान का। प्रविष्ट वन यानी क्या, प्रवेश जब भगवान ने किया जमीन के अंदर पृथ्वी गोवर्धन को उठाने के लिए, एक गुफा में प्रवेश किया भगवान ने, और गुफा में प्रवेश करके गोवर्धन को वहां से उठाया भगवान ने, तो उस गुफा का नाम है प्रविष्ट गुफा, उस वन का नाम है प्रविष्ट वन, आज उसका नाम पेठा हो गया है, अपभ्रंश होके यहां से 3 किलोमीटर आगे है पेठा गांव, और उसका नाम है और एक पारासोली, लेकिन उसका असली नाम है परम रासस्थली, दैट इज बिकम पारासोली। तो यहां पर भगवान ने नृत्य किया, गोपियों को बुलाकर नृत्य किया, और ये गोवर्धन इस समय यहां पर था, अभी उसको शाप मिला हुआ है तो इसलिए वो जमीन पर धस रहा है, नहीं तो वो उसका किनारा यहां पर भी था, अभी अब इतना दूर चला गया गोवर्धन, लेकिन वो यहां तक था, और इसके तलेटी में भगवान ने गोपियों को बुलाकर रास नृत्य किया पूर्णिमा के दिन वसंत ऋतु में। तो वो नृत्य भगवान का गोपियों का इतना सुंदर नृत्य हुआ कि भगवान के शरीर से जो द्रव निकला, जिसको हमारी भाषा में हम पसीना कहते हैं, लेकिन हमारा पसीना मतलब कैसा, बदबू वाला होता है, गंदा होता है, उसको हम अच्छा पसंद नहीं करते हैं, आपको पसीना तो हम गले लगाऊंगा नहीं, आपको आप भी लगना नहीं चाहेंगे। तो पसीना हमारे लिए एक विष्ठा की तरह है, एक स्टूल की तरह है, वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे आंखों के अश्रु होते हैं, है ना, मलमूत्र होता है, कान में से कुछ निकलता है वैक्स, सब मलमूत्र की तरह है। लेकिन भगवान के दरीर से जब द्रव्य निकलता है तो उसको स्वेद कहते हैं, स्वेद, दिव्य स्वेद कहते हैं, जिससे परम सुगंध आती है, और जिसके निकलने से आदमी थकता नहीं है, बहुत उसमें उत्साह निर्माण होता है। और भगवान के शरीर से जब निकलता है तो उससे एक सरोवर कुंड और समुद्र तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के और गोपियों के सभी के शरीर से दिव्य स्वेद निकला और वो स्वेद निर्माण होकर एकत्र होकर ये कुंड बना। और ये जब बन रहा था, मतलब स्वेद निकल रहा है, जमा हो रहा है, बन रहा है, तो देवता लोग इतने आकर्षित हो गए, उस आकाश में जमा हुए, अपने वाद्यों को लेकर, अपने कलाओं को लेकर, अपने नृत्य को लेकर, अपने गायन को लेकर सब जमा हो गए। और जो गायन में निपुण है वो गाने लगे, जो नृत्य में निपुण नाचने लगे, जो बजाने में निपुण है वो बजाने लगे, ऐसे सब दिव्य काम होने लगा। हाँ, रास राधिका, रास की चर्चा हो रही है, सोने का समय नहीं है, बैठो बीच में मत आओ। तो क्या हुआ, देवता आकाश में इकट्ठा हो गए और ना वो क्या कर रहे हैं पता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ताल जो जहां पर चल रहा है, ताल कोई म्यूजिक नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्या है यहाँ पर, कंगन और पायल, उसी का म्यूजिक है और उसपे पूरा नृत्य हो रहा है करोड़ों गोपियों का, और उसका सुर और ताल ये देवता लोग आकाश में मिला नहीं पा रहे हैं अपने एक्सपर्टीज के साथ, क्योंकि गंधर्व नृत्य में गायन में एक्सपर्ट है, यक्ष किन्नर नाचने में और बजाने में एक्सपर्ट है, अलग अलग लोग में अलग अलग कलाएं हैं, अपने इतने सुंदर कुशलता के साथ भी वो भगवान के रास के पायल और कंगन के स्वर और ध्वनि को मैच नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपना अपना कुछ बजा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राइंग अनसक्सेसफुल बट हिल ट्राइंग टू अकंपनीमेंट करने के लिए। उसमें चंद्र देवता इतने प्रभावित हो गए ना, इतने भाव विभोर हो गए कि चंद्र के पास ना समुद्र मंथन का अमृत रखा हुआ है, बचा हुआ स्टॉक ट्रेजरी, तो वो अमृत लेके आए, उसने अमृत डाल दिया इसके अंदर, बोले ये जो कुंड बन रहा है इतना दिव्य है कि ये नष्ट नहीं होना चाहिए, अमृत से सब चीज अमृत हो जाती है, तो वो अमृत लेकर डाल दिया उसने इसमें। उसके बाद भी नृत्य चल रहा है, उसके बाद भी पसीना स्वेद इकट्ठा हो रहा है और कुंड बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बाद में चंद्र जो है देवता वो भाव विभोर होकर इसमें पिघल गए, एक रूप हो गए इसके अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा है चंद्र सरोवर। तो चंद्र देवता भाव विभोर हो गए, एक्सटेसी कंप्लीटली, और ये सरोवर बना। इसके बाद में गोपियों के साथ में भगवान ने अनंत रूप धारण किए, हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण नाच कर रहे थे। और जैसे मैंने बताया ना कि आपको पता नहीं साइड में क्या हो रहा है, आपको पीले फूल गिनने को बोला था ना, आप पीले ही फूल देख रहे हैं, बाद में कौन से फूल है, गुलाबी है कि हरे रंग के, किसी को पता नहीं। वैसे ही वो नृत्य भी कर रहे हैं ना, देखो ब्रज का एक क्या बताया मैंने, एब्सॉर्प्शन, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अदर प्लेस, हमारे साथ क्या हो रहा है उसमें फुल्ली हम मग्न हैं। तो वो जब भगवान ने उतने रूप धारण किए, अनंत रूप धारण किए और हरेक गोपी के साथ नृत्य किया, लेकिन हरेक गोपी को लग रहा है कि केवल मेरे ही साथ कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसे हर एक गोपी को लग रहा है, क्योंकि वो वाजवे तो देख नहीं रहे, फुल एब्सॉर्ब्ड है, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक प्रकार का गर्व उत्पन्न होता है कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूं, सबको छोड़कर, राधा रानी को भी छोड़कर कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही सभी गोपियों के मन में गर्व उत्पन्न हुआ तो भगवान एकदम अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए। विचार करने वाली बात है सबके लिए, भगवान को सारे दुर्गुण भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अहम जब होता है ना तो भगवान चले जाते हैं, अहम के होने से भगवान कई मील दूर चले जाते हैं, त्याग देते हैं उस व्यक्ति को, अहम भगवान को पसंद नहीं। बाकी आपके अंदर बहुत सारे दुर्गुण होंगे, वो इट्स ऑल राइट, इस सारे दुर्गुणों के साथ नम्रता होगी तो भगवान आपको तुरंत माफ कर देंगे और सब सुधार देंगे आपको। तो आपके अंदर बहुत सद्गुण है और गर्व भी है तो सारे सद्गुण बेकार हैं। सारे सद्गुण तब मूल्यवान होते हैं जब ही नम्रता का गुण उसके साथ जुड़ जाता है। ये सारे जीरो सब व्यर्थ कब होते हैं, जब वो खाली जीरो ही होते हैं, जब एक लगता है उसके सामने तो हर एक जीरो की वैल्यू होती है, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000, ऐसे हर एक जीरो को की कीमत प्राप्त होती है एक के होने से, है ना। उसी प्रकार से सारे हमारे सद्गुण जो है शून्य की तरह है, उसमें नम्रता का एक गुण एक नंबर लग गया तो सारे गुणों को वैल्यू आ जाती है और भगवान की तरफ से उसकी कीमत हो जाती है। तो जैसे ही गोपियों को अहंकार हो गया, वो भगवान अंतर्धान हो गए और सब गोपियां बोलने की, पता है कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे थे, पता है कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे थे। तो कुछ देर बाद सबको समझ में आया कि वो सबके साथ थे, मेरे साथ नहीं थे, सब लोग वही बोल रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। तब उनको समझ में आया कि वो सबके साथ में अनंत रूप धारण करके नृत्य कर रहे थे और हमने बेकार का गर्व किया, व्यर्थ गर्व किया और उनका संग गवा दिया, कितनी मूर्ख है हम। तो फिर भाव विभोर हो गई वो जब कृष्ण को खो बैठे और जगह जगह लता पताओं को, बेलियों को, पंछियों को, ग्राम्य देवता, वन्य देवता, इसको उसको, जानवरों को, सबको पूछ रहे हैं कहीं हमारे कान्हा को आपने देखा है, और किसी को बताने का क्षमता नहीं है। अभी आगे की बात सुनिए शांति से एकदम। वो जो कृष्ण थे जो उनको छोड़कर चले गए, वो रस्ते में खड़े हो गए विष्णु बनकर, चार भुजा वाले, उनको भी विरह सहन नहीं हो रहा है, तो थोड़ी लीला करने के लिए चार भुजा वाले विष्णु रूप बन गए, रास्ता में खड़े हो गए। तो गोपियां समझो, अभी आप दर्शन कर रहे हो, सब लोग कथा सुन रहे हैं और तुरंत यहां विष्णु प्रकट हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे बताओ ना, क्या करेंगे? हाँ, सब लोग नहीं बोल रहे प्रणाम करेंगे, ऐसे सब लोग हिल भी नहीं रहे क्या करेंगे वर्षा? विष्णु भगवान आप ही सामने खड़े हुए तो क्या करोगे आप? प्रणाम करेंगे ना। तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया उनको, प्रणाम किया लेकिन प्रणाम करने का क्या पूछा, आपने हमारे कृष्ण को देखा है कहीं? विष्णु भगवान जो सबके आराध्य देव थे, उनके माता पिता विष्णु की पूजा करते थे, नंद महाराज विष्णु की पूजा करते हैं, वो आराध्य भगवान सामने प्रकट हो गए वैकुंठ नाथ, तो उनको पूछते हैं कि कृष्ण को देखा है क्या तुमने? इतना फोकस है उनका लाइफ में, इतना फोकस है। तो कृष्ण भी कैसे, वो चार में से एक हाथ दिखाते इधर चले गए, चार बातें एक हाथ दिखाए इधर चले गए, सब गोपियां तुरंत उनको छोड़ के चली गई, ऐसा नहीं कि विष्णु का दर्शन किया, अभी तो उनकी पूजा करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, चले गए। सब गोपियां ने उनको पूछा और चले गए। फिर राधा रानी आखिर में आई, लास्ट में राधा रानी एक भवरे से बात कर रही है, वो भवरे को कृष्ण समझ रही है, वो काले रंग का है ना, वो उससे बात करी तो वो दुष्ट है तो छोड़ के जाता है, ऐसे वैसे उसकी बातें चल रही है, और वो बातें करते करते भ्रमर के साथ वो उधर विष्णु के सामने पहुंच जाती है, और विष्णु को पूछती है कि तुमने कृष्ण को कहीं देखा है? उसका प्रेम देखकर विष्णु बने हुए कृष्ण के दो भुजाएं पिघल गई, मतलब दो भुजा वाले कृष्ण है ना, वो चार भुजाएं तो बना ली थी उन्होंने अपनी शक्ति से, लेकिन प्रेम की शक्ति इतनी प्रभावी थी कि उनकी चार भुजाएं नहीं रह सकी और दो भुजा में उनको प्रकट होना पड़ा। तो इसके आगे यहां पर गांव है, उधर वो चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, वो कृष्ण स्वयं है, वो भगवान विष्णु नहीं है, वो चतुर्भुज नारायण मतलब वो स्वयं कृष्ण जो चतुर्भुज बने थे, उन्होंने वहां पर शिव सागर प्रकट किया है। एक शिव सागर मैंने कहा ना आपको, उधर काम्य वन में प्रकट किया था, इधर जब प्रकट हो गए तो उनके चरणों के नीचे शिव सागर प्रकट हो गया, तो वो शिव सागर कुंड है वहां पर जिसमें कमल प्रकट हो गया, उसमें वो खड़े है चार भुजा वाले चतुर्भुज नारायण। क्या बताता है ये कथा आपको कि ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना, वैकुंठ का ऐश्वर्य भी नष्ट कर देता है। वैकुंठ का ऐश्वर्य क्या है? चार भुजा वाले खड़े हैं, लेकिन ब्रज का प्रेम जब आता है, अटैक होता है प्रेम का, तो ऐश्वर्य खत्म हो जाता है और चार भुजा वाले विष्णु को दो भुजा वाले कृष्ण बनना पड़ता है। अच्छा, ये जब लीला हो रही थी यहां पर, नित्य हो रहा था, तो उधर गोवर्धन में दूर बलराम जी आ गए, और बलराम जी वहां से देख रहे हैं कि कृष्ण लीला कर रहे हैं। अभी अगर सामने आ गए तो बड़े भाई का संकोच होगा ना, अरे बड़े भाई का कैसे नृत्य करेंगे सामने, सब निकल जाएंगे। उनको देखना था, इसको दिव्य लीला को देखना था, तो अभी दर्शन देंगे तो वो सब लोग बाहर जाएंगे संकोच से। तो बलदाव जी ने क्या किया, वो झुक गए ऐसे दंडवत के रूप में, झुक गए ऐसे और छुप के देखने लगे उसको, और दंडवत की स्थिति में जब छुप के देखने लगे तो भाव विभोर हो गए, उनका शरीर एकदम लकड़ी जैसा हो गया, मतलब स्तंभ हो गया पूरा। He became rock like, एक अति आनंद का एक विकार होता है, उसको कहते हैं स्तंभ विकार। तो दंडवत की स्थिति में एकदम वो स्थिर हो गए वहीं पर। तो वहां पर एक मंदिर है, गोवर्धन के ऊपर मंदिर है, उसका नाम है ढोका दाऊ जी मंदिर, मतलब
जो दाऊ जी ढोक दे रहे हैं यानी कि दंडवत कर रहे हैं उस प्रतिशत में रास का दर्शन कर रहे हैं, वो मंदिर उधर गोवर्धन के ऊपर है, गोविंद कुंड के थोड़ा आगे जाकर आपको वो मंदिर मिलता है, गुलाबी रंग का मंदिर है, उसमें हम जा सकते नहीं अंदर, लेकिन उसमें वो झुके हुए पोजिशन में है, और झुकने के बाद में उनका जो मुकुट है ना उन्होंने निकाल के रखा था झुकने के लिए, वो बीच में आता ना वो झुकने के लिए, तो जिस शिला पर रखा वो शिला पिघल गई, उसमें मुकुट के चिन्ह बन गए, वो भी उधर मुकुट शिला भी उधर ही है। ऐसा ये दिव्य स्थान है, सब अद्भुत है, यहाँ पर प्रेम का ऐसा प्रकट्य है कि सब दंग रह जाते सुनकर। अच्छा, उसके आगे वो पारासोली गांव में जो है ना परम रास स्थली पेठा गांव में भगवान जब वहां पर आए ना, आप जानते हैं सब कहानी बचपन सुनी आपने कि इंद्र ने बहुत वर्षा किया बहुत सारा, हाँ, और फिर सब लोग परेशान हो गए और ये कृष्ण ने बोला था उनको इनकी पूजा मत करो, पूजा रोक के इंद्र का पूजा रोक के गोवर्धन का पूजा किया, तो अब गड़बड़ हो गया है ना। उसके बाद भी उसी को पुकार रहे वो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, ऐसा नहीं बोल रहे इसको क्यों पुकारना, इसके वजह सब कुछ हुआ है, इसको क्यों पुकारना है, उसी को पुकार रहे। तो कहता है चलो मेरे साथ, ये नहीं पूछ रहे कहां ले जा रहे हो अभी, एक तो पहले गड़बड़ कर दिया अभी कहां ले जा रहे हो, नहीं चलो मेरे साथ, सब जा रहे हैं उनके पीछे। तो उनको सबको लेकर प्रविष्ट वन में आए वो, और बोलते हैं कि क्या करोगे अभी आप, तो उनको कहते हैं कि मैं भी ये पर्वत को उठाऊंगा। वो तुम्हारा किधर है गौरहरी है ना, समझो अभी रुको कहीं जाओ मत, रुको गौरहरी गौरहरी। अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आप जरा, अभी समझो रास राधिका मैया को अगर वो गौरहरी को आप पूछते हो गौरहरी क्या करोगे भाई आप, तो बोलेगा मैया मैं गोवर्धन को उठाऊंगा, वो पर्वत को मैं अभी उठाने वाला हूं, तो आप क्या करोगे, अभी पहले से हंस रहे हो, पहले पूछने के पहले से हंस रहे हो है ना। तो वैसे वो बोल रहा है बालक अपने दोस्तों को कृष्णा कि मैं उसको उठाने वाला हूं, तो सब लोग हंसने लगे, तू क्या उठाएगा ये तो इतना बड़ा पर्वत, नहीं नहीं मैं उठाऊंगा उसको उठाऊंगा। पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक परात पर भगवान से बात कर रहे हैं वो, लेकिन वो भगवान को जानते नहीं है, वो तो बोले दोस्त है, वो क्या उठाएगा, बोले तू कुछ दिखाएगा हमको चमत्कार तो हम समझेंगे कि तेरे पास शक्ति है। तो भगवान ने क्या पता क्या किया, ये जो कदम का पेड़ है ना ये तो कुछ भी नहीं है, ये बालक भी उसको गले लगा सकता है, पूरा घेर सकता है, ऐसे ऐसे कदम के पेड़ यहां पर है कि चार आदमी आठ आदमी भी गोलाकार करेंगे ना तो उसको घेर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े पेड़ यहां पर अभी भी है। ऐसे विशाल बुंदे वाले पेड़ को भगवान ने, जैसे आप कपड़े निचोड़ते हो ना साड़ी को, ऐसे ऐसे निचोड़ दिया उन्होंने उसको, पूरा निचोड़ ट्विस्ट कर दिया पूरा कंप्लीटली। तब बाल बालों को यकीन हुआ अरे काना कुछ कर सकता है जरूर, हमारो कन्हैया कुछ कर सकता है। तो वो पेड़ उस गांव में अभी भी है, अभी तो गुजर चुका है पेड़, लेकिन उसका उसका जो है ना ट्विस्ट किया हुआ वो आप देखोगे ना तो आपको यकीन आएगा कि वाकई में ये ट्विस्ट किया हुआ है, उसको वार्निश लगा के सेव करके कांच के में रखा है उसको, ऐसे अद्भुत चमत्कार है। तो भगवान ने वो दिया दिखाया, फिर भगवान वो गुफा में चले गए, और गुफा में पहले उन्होंने ऐसे हाथ पे हथेली पे उठाया, और थोड़ा उठाने के बाद में फिर उंगली पे उठाया। तो यहां पर एक भक्त हुए हैं, हाँ, इनका नाम चतुर्भुज दास है, उनके पिताजी का नाम है कुंभन दास, वो ना श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में से एक है। ऐसे कहते हैं कि भगवान ने जितनी लीला अपने ग्वाल बालों के साथ की और उनका लीला समाप्त हुआ और अंतर्धान हो गए, लेकिन उनका बाल लीला सखाओं के साथ करके वो संतुष्ट नहीं हुए, उनका लगा कि खोरा अभी पूर्ति नहीं हुआ है, थोड़ा और करना चाहिए, इसलिए वो श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए दोबारा, अपने सखाओं के साथ में बाल लीला करने के लिए वो प्रकट हुए, और उसकी विशेषता यह है कि कुछ समय मूर्ति के रूप में कुछ समय प्रत्यक्ष रूप में, ये उनकी लीला का विशेषता है। कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष रूप में ही थे वो, लेकिन श्रीनाथ जी के रूप में जब चाहे तभी मूर्ति रूप, जब चाहे तभी प्रत्यक्ष रूप। तो उनके अष्ट छाप यानी आठ सखा थे, उसमें से एक है सूरदास जी प्रधान, उसको सूर सागर कहते हैं, उसकी उपाधि सागर की दी गई उनको, और वो दो प्रमुख आचार्यों के शिष्य थे, चार चार, एक है गोकुलनाथ जी और एक है विठलनाथ जी, और दोनों महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, दो प्रधान शिष्य थे, बेटे भी थे उनके शिष्य भी थे, तो चार जो गोकुलनाथ जी के शिष्य थे और चार विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो इन सब में प्रधान थे सूरदास जी, और तो उसमें से एक कुम्मनदास भी है। तो एक बार क्या हुआ, अब ये लीला तो कृष्ण समय की नहीं है, ये बाद की समय की लीला, जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं तो वो प्रकट प्रत्यक्ष रूप में आते हैं और कुम्मनदास को रात को जगाते हैं। कुम्मनदास जी बुढ़ा आदमी है तो सखा भगवान का, लेकिन बूढ़े शरीर में है, और ये 7 साल के बालक हैं, उसको रात को उठकर जगाते हैं, हे कुम्मनदास, ए कुम्मना उठो, चलो मक्खन चुराने जाते हैं। वो एक गोपी वहां पर है यतिपुरा में, वो दिन रात दही बनाती है और मक्खन बनाती है और यही प्रार्थना करती है कि कन्हैया आ जाए, वो मेरे घर में चोरी करें, आज उसकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे वो कोई जतिपुरा में कोई है बुढ़ी औरत जो अपने घर में रोज मंथन कर रही है और ये प्रेम प्रे कर रही है, जब कृष्ण तो बहुत साल पहले चले जा चुके हैं, लेकिन उनकी भक्ति से वो प्रार्थना कर रही है, तो ये श्रीनाथ जी के रूप में जो प्रत्यक्ष भगवान है वो कुम्मनदास को जगा के बोल रहे हैं चलो घर में चोरी करते हैं। तो कुम्मनदास क्या बोलते हैं उनको, अरे तुम तो जवान हो, तुम तो भाग जाओगे, मैं तो बुढ़ा हूं, पीठ में ही जाऊंगा ना, तुम तो ऐसे ही करते हो हमेशा, खुद भागते हो, मैं पीट जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, वो गोपी के घर में जाना है, कोई संभाल लूंगा मैं, चिंता मत करना, संभाल लूंगा मैं, आप चलो। तो रात के समय पर कुम्मना को लेकर वो गए और वो पेड़ पे चढ़ाया उसको, पेड़ पे चढ़ पे उसके छत पे उतरे, छत पे से उसके खिड़की से उतरे, खिड़की से उसके घर में उतरे, और ये बुड्ढे के शरीर पे चढ़कर वो माखन खा रहे, फिर लटक गए, फिर खा रहे, फिर ये देख रहे हैं उनको। तो क्या देखते हैं वो, कि भगवान ऐसे मटके पे लटके हुए और एक हाथ से माखन खा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है उनको, इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि खाए जा रहे हैं। सुन रहे हैं क्या आप, वो सुंदर कथा है, सुनो। तो अचानक उनकी जो धोती है ना वो छूटने लगती है, होता है ना, हाँ कुंभन की नहीं कृष्ण की, मैं जग रहा हूं पूरी तरह से, डोंट वरी, मैं धोती में अदला बदली नहीं कर रहा हूं। तो वो भगवान की धोती छूट रही है, वो भगवान को भी ध्यान में आया कि धोती छूट रही है, लेकिन अभी एक हाथ से डोरी पकड़ी है, एक हाथ से माखन खा रहे हैं, वो हाथ फ्री है, लेकिन वो माखन खाना बंद नहीं करना चाहते, नो इंटरप्शन प्लीज, कंटिन्यूस एक्टिविटी हैज टू बी देयर। तो क्या करते हैं, ये देख रहे हैं उसको कुम्मना, तो अचानक कुम्मना क्या देखते हैं कि भगवान के पीछे से कंधे से दो हाथ निकलते हैं, पीछे जाते हैं, धोती को ठीक करते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं, और वो हाथ से माखन खाना चालू रहता है। उसके बाद में आवाज होता है कुछ कुछ, तो वो गोपी उठ जाती है, देखते कि बुड्ढा बैठा है, उसको पीटना शुरू कर देती है, और ये ऊपर छत से भाग जाते हैं, उसको बहुत पीटते, कैसे भी करके वो छुटा छुटकारा पाते हैं, भाग भाग के हाफ काफ के आता है, और ये पेट पकड़ के हा 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 करके, तो कुम्मना कहते हैं कि बताया था ना तुमको, तुम मुझे रात को लेके आए, मैंने अच्छा पिटवाया मुझे तुमने। तो ये कुम्मना जब घर पे गया ना, तो कुम्मना का भी एक बहुत अद्भुत कहानी है, उसको भी बहुत उम्र तक बच्चा बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन भगवान की असीम कृपा से इतनी बुढ़ी अवस्था में उसकी पत्नी गर्भवती थी, तो जब उसको बालक हुआ तो उसने उस बालक का नाम रखा चतुर्भुज दास, तो आपको लगा कि विष्णु का नाम रखा, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा था उसका नाम रखा उसने चतुर्भुज दास। और ये चतुर्भुज दास भी अष्ट सखाओं में से एक हैं, वो भी कुछ कम नहीं थे, उनको भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष होता था, भगवान उनके लिए मूर्ति छोड़कर आते, मूर्ति का रूप छोड़कर प्रत्यक्ष रूप में आके खेलते थे। तो इनकी एक लीला मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने उत्कट भक्त थे भगवान के, क्या लीला किया उन्होंने, एक दिन भगवान ने बोला उनको, ए चतुर्भुज चलो हम घोड़ा करते, तो घोड़ा बन, मुझे सैर करने की इच्छा हो रही। अभी गड़बड़ क्या पता है कि ये तो चतुर्भुज के लिए प्रत्यक्ष है, लेकिन दुनिया के लिए अदृश्य है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ रहे किसी को, लोग क्या बोलेंगे विष्णुदास पागल हो गए, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आप हो, आप आपके लिए भी मैं हूं, लेकिन इनके लिए आप नहीं हो, इधर है ही नहीं। तो मैं श्याम मोहन से बात कर रहा हूं, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, ऑपरेशन किया कि नहीं किया, बोला किधर प्रभु जी को क्या हो गया है, कथा में बीच में किससे बात कर रहे हैं। ऐसे था वो, तो वो तो प्रत्यक्ष रूप में बात करके खेल रहे हैं उनसे, अभी वो घोड़ा बनकर दुनिया भर घूम रहा है मंदिर में, उसके ऊपर सुनिया जी बैठे हुए हैं, लेकिन दुनिया को सुनिया जी नहीं करा रहे, तो दुनिया क्या बोलती थी, चतुर्भुज आज तो पागल है बिल्कुल, क्या करता है समझ में नहीं आता है। कुमना के पास कितना कंप्लेंट किया उन्होंने, वो कुमना को पता है उसकी लीला क्या है, लेकिन वो क्या लोगों को बताएगा, लोगों को क्या समझ में भी आएगा, क्या विश्वास करेंगे लोग। तो उस दिन मंदिर प्रांगण में, जो अभी भी गिरिराज के ऊपर सफेद रंग का मंदिर है, उसके प्रांगण में ये भगवान ने घोड़ा बनाया, भगवान उस पर बैठे और हैट हैट करके उसको दुनिया भर घुमा रहे हैं। बहुत देर घुमाया उसको और वो चल रहा है बेचारा। बीच में बोला, अरे कन्हैया मुझे इधर लघु शंका करनी है, मेरा फुल हो गया है टैंक, कुछ थोड़ा टाइम तो देना, इतना देर घुमाया तुझे, थोड़ा विश्राम करके जाके आने देना। वो बोलता है, घोड़ा बने हो घोड़े की तरह ही करो, जब घोड़ा गाड़ी चलती है तो घोड़ा रुकता है क्या, वो तो चलते चलते सब कर लेता है अपना, 1-2 जो भी करना है उसको। तो ये चालू हो गया भगवान के आदेश के अनुसार, तो इसकी धार निकल रही है और वो घोड़ा बन के सब घूम रहा है। तो लोग लग रहे, ए, मंदिर में अभी तक तो ये सब पागलपन ठीक था, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी तक तो बालपन तो समझ गए हम लोग, ये तो दिस इज टू मच। तो कुमना को बुलाया, बहुत कंप्लेन किया, बहुत हल्ला मच गया कि अभी ये बहुत ज्यादा हद के बाहर चला गया, इसको मंदिर से बरी कर दो, कभी प्रवेश नहीं करने देना। तो वो बेचारा कर रहा है ना, तो भगवान अभी जैसे लोग आ गए ना, चिल्लाते चिल्लाते डंडा लेकर आ गए, तो भगवान उतर गए और सारे लोगों ने बहुत पीटा उसको, और ये तालियां बजा के हंस रहे चतुर्भुज को पीटा जा रहे हैं। लेकिन सब लोग तो बहुत गंभीर थे, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया उसको, मीटिंग लिया और डिस्कस किया, इसको मंदिर से भरी कर दो। रात को जब विट्ठलनाथ जी वापस भगवान को शयन करने श्रीनाथ जी के पास में गए, तो वो भी सिद्ध थे, उनसे भगवान बात करते थे, तो श्रीनाथ जी ने उनको बताया, जो आपने आज किया अच्छा नहीं किया, वो मेरा भक्त है, मैंने ही उसको सब लीला करवाया था उससे, उसका भी मेरे मंदिर में आके मना मत करना। तो विट्ठलनाथ जी ने आके माफी मांगे कुमना की और फिर उसको प्रवेश दिया है, और ऐसी ऐसी लीला किया है जो मैं यहां बैठ के आपको बता नहीं सकता। इसके आगे की भी लीलाएं बहुत सारी है इसी प्रकार की, इससे भी इंटेंस। तो ऐसा है श्रीनाथ जी भगवान की लीला, तो ये सब यहां की लीला है। कुमना कुमनदास जी तो इसी गांव के थे, और लास्ट लीला यहां की जो है, वो जो सूर सागर हैं, सबसे सूरदास अंधे थे, वो भी यही के हैं। उन्होंने चंद्रशेखर सरोवर के किनारे 73 इयर्स तक निवास किया है, 73 साल तक। जो भी सूर शाम पत्रिका, विनय पत्रिका, जो भी उन्होंने भजन लिखे हैं, जो ब्रज के आज के सबसे स्टैंडर्ड और श्रेष्ठतम उनका साहित्य है, जो लीला हमको भागवत में नहीं मिलती है, जो पुराणों में नहीं मिलती है, वो सूरदास और ये सबके परमानंद दास जी, सबके अष्टचाप में से 8 लोग है ना, वो इनने सबने लीलाओं का दर्शन किया है, और दर्शन जो किया है उसका लेखन किया है कविता के रूप में, वो कल्पना नहीं करते थे, जो दर्शन करते थे उसको लिखते थे। तो मान लीला जो है मान मंदिर की, वो सूरदास ने लिखी है। ऐसे उत्कट लीलाओं का वर्णन आपको इनके भजन में मिलता है, और यहां पर बैठकर सूरदास जी ने भजन भी किया है, सब लेखन भी किया है। तो ऐसी ये बहुत सुंदर जगह है, तो आप लोग प्रार्थना करो कि ठाकुर जी हम पर भी कृपा करें, उनको भी आशीर्वाद दें, कि हम भी कुछ कण मात्र भजन उनका, भक्ति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो टूरिस्ट के रूप में सब लोग आते जाते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ भगवान के अनुकूल भाव उत्पन्न हो जाए, कुछ भजन के भाव उत्पन्न हो जाए, कुछ इच्छा हो जाए उनकी सेवा करने की, उनके नाम के प्रति कुछ आसक्ति उत्पन्न हो जाए, कुछ जप शुरू हो जाए हमारे जीवन में, कुछ नियमों का पालन हो जाए, कुछ सेवा हो जाए भगवान की, वैष्णव बने हम, वैष्णव का संग प्राप्त हो जाए, कुछ अच्छा मार्गदर्शन अच्छा संग प्राप्त हो जाए, ताकि हम भटके नहीं, इंद्रिय भोग के चक्र में हम फंस नहीं जाए, और भगवान के विषय में हमको आसक्ति पैदा हो, हमारा बचा हुआ जीवन जो है उनके प्रेम और आनंद और सेवा में चले जाए। ये सब भिक्षा मांगने का जगह है ये, और भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे जैसे उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, और जीवन को धन्य करेंगे हमारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री राधे।
कुछ हम बताएं?
नहीं हमको जाना है, अभी बहुत देर हो गई प्रभु जी। हाँ पता है मुझे प्रभु जी, लेकिन अभी कैसा है ना, एक आध छह दिन है, हमारा एक का समय था, हमने तीन बजा दिया, 120 सेकंड।
जो आपकी इच्छा,
जल्दी जल्दी बोलना।
देखो जहाँ पे आप बैठे हो ये स्थान है चंद्र सरोवर, ये सामने आप देख रहे हो।
अच्छा प्रभु जी एक बात इसमें है कि मैंने सारी बातें बता दी है, वो दोहरा के कुछ फायदा नहीं है, आपको कुछ स्पेशल है तो बता दो।
स्पेशल ये है कि मैं तरीका बताऊंगा कैसे बनाइए।
हाँ वो बताओ, चलेगा जरूर बताओ,
वो मुझे दे दो तो सबको सुनाई देगा आपका थोड़ा माइक्रोफोन।
वो ये कैसे बनाया ना मैंने बताया प्रभु उनको।
अच्छा कैसे बना,
रासलीला का सब बताया उनको मैंने।
चलो फिर कोई बात।
हाँ और बताओ,
फिर क्या
बताओ, कुछ चतुर्भुज दास का बताओ, कुछ सूरदास का बताओ, कुछ कुंभना का बताओ। नहीं नहीं कुंभना का बताओ ना, कुछ और एक्स्ट्रा बताओ, आपको ज्यादा पता होगा।
कुंभनदास
जी का बताओ, सूरदास जी का बताओ, लीला
कुछ। कुंभनदास जी का जो है मुझ पे, मैं वो आपको सुनाता हूँ। कुंभनदास जी जमनाता गाँव जो है वहाँ पर तपस्या करते थे, और ये बाबा जो बोले आप में कि अष्ट कवियों में सूरदास बाबा चंद्र सरोवर पे 73 वर्ष विराजे और भगवान श्री कृष्ण को 125,000 पद लिखने का दृढ़ संकल्प लिया, तो यहाँ पर 105 वर्ष की उम्र में और 100,000 पद लिख के लीला में चले गए। अब 25,000 पद बचे, उन्हें कौन पूरा करेगा, ऐसा एक पद लिखो 100,000 में।
यहाँ पर आइए भाई, उधर आवाज आएगा, पकड़ना इस बात।
हाँ ऐसा एक पद लिखा बाबा ने के भरोसो दृढ़ चरणन चीरो श्री वल्लभ नख चंद्र चटाबिन सब जग माए अधेरो। मैं तो अंधा व्यक्ति हूँ, सब जग माए अंधरा है मेरे लिए, तो सब जग माए अंधेरो साधन नाए और या कल में, ठाकुर जी के नाम के बिना कलयुग में कोई साधन नहीं है, साधन नाए और या कल में जासो हो तो निबेरो, सूर कहा के दुबिध आंधिरो बिना मोल को चेरो भरोसो भरोसो दृढ़ चरण चेरो। प्रभु से ऐसी कल्पना करने के बाद 105 वर्ष की उम्र हो गई उनकी और अपना देह त्याग दिया। एक दिन हमारे ठाकुर जी सूरदास बाबा बोले कि मेरे को सीनाजी जतिपुरा कोई लेके जाए, मेरी ऐसी कामना है, तो कौन लेके जाए, बगैर स्वार्थ के तो कलयुग में कोई चलता ही नहीं। तो भगवान बोले कि मैं अपने भक्त की लाज रखूंगा। तो बाबा के पास आए 5 वर्ष की उम्र के बालक बन के, और बाबा ते बोले कि बाबा मैं लेके चलूंगा आपको। तो बाबा को रोज नित प्रतिदिन ले जाते लाते रहे। तो एक दिन ठाकुर जी ने लीला करी, कैसी लीला करी कि बाबा को हाथ छुड़ाए के चले जाए। तो बाबा क्या बोले कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, और हृदय में ते जाएगो जब जानूंगो तो। ऐसी बात बताओ,
मतलब पहचान गए उनको।
हाँ ठाकुर जी को पहचान लिया, मेरे बोले कि मेरे अंदर से जाके दिखाओ, ऐसे तो चले ही जाओ। तो हमारे बाबा जब हमारे सिनाजी बाबा का बखान करके आते तो गोसाई बालक जो होते, जो पुजारी होते हैं, तो बोले ये बाबा अंधा नहीं है, इसको सब कुछ दिखता है, इनकी परीक्षा लेंगे हम। कैसे परीक्षा ली बाबा की, कि हमारे सिनाजी बाबा को श्रृंगार करा के और आभूषण पहनाया पर वस्त्र नहीं पहनाया। अरे बाबा पहुंच गए, तो बाबा से बोले कि बाबा हमारे ठाकुर जी कैसा श्रृंगार को दर्शन दे रहे हैं, तनक हमें विस्तार करके बताओ। तो क्या बोले बाबा कि आज हरि देखे नंगम नंगा, गल मुतियन और माल विराजे नाहे जंगम जंगा। जंगम जंगा मतलब वस्त्र नहीं है, कि आज नहीं गल मुतियन और माल विराजे नाहे जंगम जंगा, कि आज हरि देखे नंगम नंगा। ऐसी कल्पना करके और ठाकुर जी का पहला पद गाया ठाकुर जी के चरणों का, कि चरण कमल बंदो हरे राय जाकी कृपा पंग गिर लंके। ठाकुर जी कृपा हो तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाए, ऐसा कुछ है इसमें। जाकी कृपा पंग गिर लंके अंधेरे को सब कछु दर्शाई, बेहरो सुने मोको पुन बोले रंग के चले श्री छत्र धराई। ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो उस पर क्या कमी है आप बताओ, जिस पर ठाकुर की कृपा नहीं है उस पर तो सब कमी है, जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए तो उस पर कोई कमी नहीं है, अनोखा ब्रह्मांड मिल जाए ठाकुर जी। तो हमारे कुंभनदास जी के बारे में महाराज जी ने बताया आपको, मैं एक शब्द बोलूंगा कि हमारे कुंभनदास जी का नाम बहुत सुना, तो हमारे अकबर राज में हमारे अकबर राजा ने फतेहपुर सीकरी उन्हें बुलाया कि बोले हमने कुंभनदास जी को बहुत नाम सुनो है, उन्हें बुलाए के लाओ। तो उनके दूत जो है सेनानी जो आए और बाबा थे बोले बाबा आपको हमारे महाराज ने बुलाया और आप चलो हमारे साथ। तो मैं चलूं, वैसे तो मेरी मन में इच्छा ना है मैं जाऊंगा आपके साथ, लेकिन आपने बुलाया हो तो चलो। तो हमारे बाबा से बोले, महाराज के सामने बिठा दियो जाके, और बाबा थे बोले कि बाबा आप पर सुनाओ, बहुत नाम सुनो आपको। तो क्या पर सुनाया बाबा ने कि आवत जात पर नैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, कुमन दास लाल भक्त को फतेहपुर श्री कृष्ण का काम। तो क्या बोले कि तुमने मेरे काम छुड़वाई दियो, मतलब मेरे ठाकुर जी को नाम बिसरवायो, और आपने मेरी चप्पल टूट गई आते जाते, तो मेरे को तो कोई धन या लोभ नहीं है, तो मैं आपके पास हूँ। तो बड़ा सुंदर पद गाया,
मेरे को कोई काम
कोई काम नहीं है। तो महाराज श्री बोले कि आपको मांगो, मुझे क्या चाहिए आपको? अरे महाराज आप क्या दोगे, मैं धन का लोभी नहीं हूँ, कि मुझको देना चाहते हो तो एक चीज दीजिए कि मैं आपको जीवन भर चेहरा ना देखूं। कुम्मन दास जी की बात है, मेरा आपने लिखा नहीं है, कुम्मन दास जी की बात है। तो सुनो क्या पद गाया, माहिरे मेरो शामिल गो संग डोले, इत जाऊं उत आड़ही आबे, बगर बुलाए बोले, महिरी मेरो शामिल गो संग डोले, कुम्मन दास लाल गिरधर मेरो, कुम्मन दास लाल गिरधर मेरो, हसी हसी घुंघटा खोले, हसी हसी घुंघटा खोले, माहिरी मेरो शामिल गो संग डोले। बोले गोवर्धन नाथ की जय, गुरुदेव महाराज की जय।
ऐसे सूरदास जी ने कई जगह पर दर्शन का वर्णन किया है, कई जगह पर, कई उनकी लीला है कई मंदिरों में। वो
एक बार इन्हें हाथ जोड़वाना है बस, सरोवर की तरफ मुंह करके, इतना काम मुझे करना है। सब लोग उधर सरोवर की तरफ मुंह करेंगे अपना और हाथ जोड़ेंगे, हृदय से प्रभु को याद करेंगे, यात्रा के लिए लीजिए। खड़े हो जाओ,
नहीं अभी करता हूँ।